लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि समाज से उन्हें सुरक्षा मिले और उनकी पीड़ाओं पर ध्यान दिया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कांस्टेंट लेबन्स के जीवन एवं छोटा नागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं।
चलो मेरे साथ यीशु के घर, चलो मेरे साथ।
छोटा नागपुर की कलीसिया ने अपने विकास की राह पर कई प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है। जमींदारों और सरकारी अधिकारियों के अपमान, हिंसा, अन्याय और दुख को सहा है। उन मिशनरियों और हमारे ख्रिस्ते पूर्वजों को कभी नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस कलीसिया को सींचा एवं बढ़ाया है। छोटा नागपुर में कार्तिक मिशन के संस्थापक कहे जाने वाले फादर लेबन्स का मिशन काम आसान नहीं था, बल्कि लगातार कठिनाइयों से भरा था। उन्हें न केवल भूख, थकान, प्यास, असुविधाओं और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, बल्कि लोगों के कड़े विरोध का भी सामना करना पड़ा। इन सब के बावजूद बेल्जियम के जेसुइट मिशनरी ने छोटा नागपुर में ख्रिस्त की ज्योति जलाई और पीड़ित एवं उपेक्षित लोगों को जीने का रास्ता दिखलाया। आज हमारा दायित्व है कि हम फादर लेबन्स द्वारा जलाई गई ज्योति को प्रज्वलित रखें। पिछले कार्यक्रम में हमने ख्रिस्तियों और मिशनरियों पर अत्याचार की दुखद कहानी सुनी थी। इस कार्यक्रम में हम सरकारी अधिकारियों के अन्यायपूर्ण बर्ताव एवं मिशनरियों द्वारा मिशन की रक्षा के प्रयास के बारे सुनेंगे। फादर लेबन्स के लिए यह स्पष्ट था कि जब तक ख्रिस्तों और मिशन को निर्दोष साबित न कर दिया जाए, छोटा नागपुर के भीतर और बाहर लोग सरकारी अधिकारियों की झूठी बातों पर ही विश्वास करेंगे और जमींदारों को इसका गलत फायदा मिलेगा, जबकि कार्तिक मिशन को अपूर्णीय झटका लगेगा एवं लोग न्याय पाने के अवसर को खो देंगे, अर्थात वे अपने आप को ही बचा नहीं पाएंगे। अतः जमींदारों और पुलिस के गलत रिपोर्ट की सच्चाई को उजागर करना बहुत जरूरी था। इस प्रयास में फादर लेबन्स ने आधिकारिक जांच में कई अशुद्धियां पाई। अपने अनुभव एवं व्यक्तिगत ज्ञान से वे जानते थे कि वहां कोई विद्रोह नहीं हुआ था। सरकारी अधिकारी जब जांच के लिए निकले थे, तब वे पूरी तरह पूर्वाग्रह के वश में थे कि वहाँ विद्रोह हो रहा है जिसको उन्हें कुचलना है। फादर लेबन्स ने यह भी गौर किया कि न्याय करने के लिए भी जांच के लिए भेजे गए अधिकारी ही बैठे थे जो लोगों को कठोर दंड दे रहे थे और ख्रिस्तियों, मिशनरियों एवं कैथोलिक धर्म के खिलाफ भी अनुचित आरोप लगाए जा रहे थे। उन अनुचित कार्यों को रोकने के लिए उन्हें शुरू में पता नहीं चल रहा था कि क्या करें, क्योंकि वे सिर्फ कमिश्नर के द्वारा जमींदारों की शिकायत को जान सकते थे और अब वहां मिस्टर रेनी, जो मिशनरियों के खिलाफ थे, जांच करने गए हुए थे। जब मिशनरियों से रिपोर्ट एवं जानकारी मिली, तब फादर लेबन्स एवं अन्य फादरों ने निश्चय किया कि कुछ न कुछ जरूर किया जाना चाहिए। चुपचाप रहना और कुछ नहीं करना मिशन को खतरे में डालने वाला था। लोग मिशन से अपना विश्वास खो देते और अन्याय चलता रहता। इस प्रकार सभी मिशनरी एकमत हो गए कि संघर्ष जारी रखा जाए। मिशन के निदेशक को अच्छी तरह मालूम था कि इस तरह से ख्रिस्ते मिशनरियों और अपनी प्रेरिताई को साबित करना आसान नहीं होगा। इसके लिए मिशनरियों को बहुत काम करना होगा। सरकारी अधिकारियों से निंदा और अपमान मिलना भी निश्चित था और इसके द्वारा उनके प्रति जो सद्भाव था वह भी समाप्त हो जाने वाला था। इस कार्य को आगे बढ़ाने हेतु आखिरी निर्णय कलकत्ता के महाधर्मदर्श पॉल गोथल्स का होना था। फादर लेबन्स ने उन्हें स्थिति की पूरी जानकारी दे दी थी। अन्य मिशनरियों ने भी अपनी ओर से महाधर्मदर्श को पत्र लिखा था और स्थिति की जानकारी दी थी। जब संकट बढ़ता ही जा रहा था तो पत्र अपील के रूप में भेजा जाने लगा कि उन्हें मिशन को बचाने के लिए कानूनी कार्रवाई हेतु समर्थन मिले। महादा मदश गोथल्स हमेशा सोच समझकर और विवेक से निर्णय लेते थे। उन्होंने इस संकट के समय में भी अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव नहीं लाया। संकट जरूर थे, परंतु निर्णय लेने से पहले वे पूरी जानकारी लेना चाहते थे कि छोटा नागपुर में हो क्या रहा था। दूसरी ओर मिशनरियों को उनके सहयोग की बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि वे जानते थे कि कलकत्ता में उनके बहुत प्रभावशाली मित्र थे जो सक्षम कूटनीतिक और प्रतिष्ठित उच्च सरकारी अधिकारी थे। एक लंबे पत्र में फादर लेबस ने महाधर मदश को छोटा नागपुर की स्थिति के बारे विस्तृत जानकारी दी और बारंबार दोहराया कि ख्रिस्तों द्वारा किसी तरह का विद्रोह नहीं किया गया है। प्रमाण के रूप में उन्होंने मिस्टर ग्रिमले, मिस्टर पैच और मिस्टर यंग के विचारों से महाधर मदश को अवगत कराया। अक्सर समाज में देखा जाता है कि न्याय और सच्चाई के रास्ते आसान नहीं होते, उन्हें विभिन्न बुराइयों का सामना करना पड़ता है जो कभी कभी बहुत मुश्किल प्रतीत होता। फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबंस की जीवनी और छोटा नागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
चलो मेरे साथ यीशु के घर, यीशु के घर, यीशु के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है यीशु के घर, शांति ही शांति है यीशु के घर, यीशु के घर, यीशु के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है। डर नहीं है यीशु के घर, डर नहीं है यीशु के घर, यीशु के घर, यीशु के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है। दुख नहीं है यीशु के घर, दुख नहीं है यीशु के घर, यीशु के घर, यीशु के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक मानवता के फूल। लेखक हैं कृष्णकांत दुबे। श्रोताओं, हम अतिथि को मेहमान के नाम से जानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि सम्मान के सूचक हैं। संस्कृत भाषा में एक प्रसिद्ध श्लोक है, अतिथि देवो भवः। यह श्लोक हमारे भारत की आन बान शान का प्रतीक है। अतिथि हमारे लिए देवता तुल्य हैं। उनकी इज्जत करना हमारा धर्म है। हमारे भारत का यह विचार भारत के मार्गों पर शान व सम्मान के साथ लिखा हुआ रहता है। हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता ने हमें अपने अतिथियों का सम्मान करना सिखाया है। परिवार में अतिथि की देखभाल किस तरह से की जाए, इसे बच्चों को बोलकर नहीं सिखाया जाता। बच्चा खुद इसे देखकर सीखता है और जब वह बड़ा होता है तो इसे अपने जीवन में अमल करता है। यह अलग बात है कि शहरों में चोरी, ठगी वगैरह के कारण लोग अनजान व्यक्ति को सहज से अपने घर में प्रवेश नहीं कराते, पर गांवों में यह संस्कृति अभी भी बरकरार है। घर आए मेहमान को कभी भूखा सोने नहीं देते, जहां तक बन पड़े उसकी सेवा शुश्रूषा करते और दूसरे दिन विदा करते हैं। इसे उन्हें वास्तविक खुशी मिलती है, एक तरह का संतोष मिलता है। यही सच्ची मानवता है। पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर एक अनजान जरूरतमंद की मदद करके तो देखिए, आपको भी आंतरिक खुशी मिलेगी। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं कृष्णकांत की लिखी नाटिका मानवता के फूल।
चित्रा चित्रा, प्रभु की बड़ी कृपा है। चित्रा देखो, बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं और हम पति पत्नी मिट्टी की दीवारों वाले इस गरीब घर में इस अलाव के निकट बैठे हैं, और हमारे बच्चे को देखो, कपड़ों में लिपटा इस झूले में आराम से सो रहा है।
जानती हूँ आनंद, लेकिन ये दूर से जो भौंकते हुए कुत्तों की आवाजें आ रही है ना, जाने क्यों मुझ में डर पैदा कर रही है।
डर? सच कहूँ चित्रा, शंका और चिंताएं भय पैदा करती हैं, वही उन्हें जन्म देती हैं।
हाँ, चिंता तो है जो मुझे परेशान किए जा रही हैं। ये अलाव की लपटें आज हमें जरूर गर्मी दे रही है, लेकिन मुझे चिंता है कि कल क्या होगा।
वही होगा जो भगवान चाहेगा। चित्रा, प्रभु ने हमें यह घर दिया है, अलाव की यह अग्निशिखाएं दी है जो हमें शीतलहर से बचा रही है। वह कल की आपदाओं से भी हमें जरूर बचाएगा, कुछ न कुछ वो हमारे लिए जरूर करेगा।
हाँ, पर आनंद भूलो नहीं, कल सारा गांव त्योहार मनाएगा, इसलिए कोई आशा नहीं कि कल हमें मजदूरी मिले ही। हम त्योहार भी खुशी से मनाएं तो कैसे, जब कल के लिए सिर्फ दो रोटी इतना ही आटा है।
चित्रा, हम कल की फिक्र क्यों करें, और मैं जानता हूँ कि ईश्वर हमारे साथ है, संभव है कि कल हमारे पास डिब्बा भर रोटियां हो खाने के लिए।
और यह भी तो संभव है आनंद कि कल वो दो रोटियां भी हमारे पास ना हो।
चित्रा, बाहर शीत हवाएं चल रही हैं और हम घर में बैठे ठिठुर भी नहीं रहे। तुम उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचती जिनके पास न पहनने को कपड़े होंगे, न घर, न अलाव की ये गर्मी।
बहुत ठंड है, ऐसा नहीं ये शीत हवाएं मुझे यहीं पर ही जमा दे आज रात को। अरे कहीं कुछ सहारे को दिखा भी नहीं। वो दूर एक कुटिया दिख रही है, आग जल रही है, कुछ ना कुछ आज रात को रहने का तो इंतजाम हो ही जाएगा। वहीं जाकर कोशिश करता हूँ, अगर कोई भगवान का प्यारा बंदा मुझे सहारा दे दे आज रात के लिए। कोई है? अरे कोई है जो इस मुसाफिर को इस शीत हवाओं से बचाए, इस भूखे प्यासे मुसाफिर को दो रोटी दे दे। अरे भाई कोई है?
चित्रा, कुछ सुना तुमने? लगता है कोई मुसाफिर ठंड और भूख के मारे हमें पुकार रहा हो।
कोई है?
हाँ, कुछ आवाजें तो मुझे भी आ रही हैं।
सुनो चित्रा, मुझे लगता है वो मुसीबत में है, मैं उन्हें अंदर लेकर आता हूँ।
कोई है भाई? दरवाजा तो खोलो।
आनंद, अंदर लाने के पहले सोच लेना।
अरे चित्रा, तुम चिंता मत करो। भाई साहब, सुनिए भाई साहब, कौन है आप? इस रात में आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और ठंड भी ऐसी पड़ रही है, आपके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है।
अरे भैया, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरा नाम प्रभात है, मैं 5 कोस दूर से चलकर आ रहा हूँ। मेरी गाड़ी भी खराब हो गई है, पहनने को गर्म कपड़े और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भैया, मैं बहुत भूख से तड़प रहा हूँ और ठंड भी बहुत जोर की लग रही है, मुझे आज रात के लिए सहारा दे दो भैया, मैं बहुत तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा।
अरे भाई साहब, इसमें एहसान वाली क्या बात है, आइए आप घर के अंदर आइए।
आइए भाई साहब, हमारा परम सौभाग्य आप हमारी कुटिया में पधारे।
भाई साहब, ये मेरी पत्नी है चित्रा।
नमस्ते।
नमस्ते। तुम सब पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे।
भाई साहब, मैंने यहाँ अलाव के पास आपकी बैठक लगा दी है, आप यहाँ आके बैठिए।
अतिथि तो भगवान समान होते हैं, अब हमारे पास जो कुछ भी है आप उसे ग्रहण करें।
भाभी, मैं आप लोगों का ये स्वागत का एहसान कैसे उतारूंगा, बस जो भी कुछ हो जल्दी ला दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है।
जी, अभी लाई।
भाई साहब, मैं अलाव के पास आपका बिस्तर लगा देता हूँ, आप वहीं आनंद करिएगा।
और आप लोग कहाँ पर सोएंगे?
जी हमारा क्या है, हमारी रात तो आपस में बातें करते करते ही कट जाएगी।
भाई साहब, आज इस घर में बस यही कुछ था, इसे ही ग्रहण कीजिए। ये दो गरम रोटियां, दो भुने आलू, चटनी और थोड़ा सा दूध।
यह मुसाफिर के लिए बहुत है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खाना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझ भूखे को इतना सारा खाना दे दिया।
अरे भाई साहब, दीजिए तो सही।
तुम दोनों ने आज की इस भयानक शीत और भूख से मुझे बचा लिया, ईश्वर तुम पर सदैव कृपा बनाए रहे। अरे भैया, भाभी, आप दोनों रात भर सोए नहीं क्या, अभी भी जगे हुए हैं?
अरे भाई साहब, पता ही नहीं चला कि बातों बातों में कब रात बीत गई।
अच्छा भैया, अब मुझे जाना है, आपने ये कठोर रात मुझे अपनी शरण में बिताने दी, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं?
अरे भाई साहब, अभी पूरी तरह भोर भी नहीं हुई है और आप जाने की बात कर रहे हैं, आप इतनी रात गए कहां जाएंगे?
असल में मुझे बहुत दूर जाना है, आज पर्व का दिवस भी तो है, मुझे जाना होगा, मुझे आज्ञा दीजिए।
अच्छा भाई साहब, अगर आप इतनी जिद करते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन फिर कभी यहाँ से गुजरे तो हमारे घर जरूर पधारिएगा।
अच्छा भैया, अच्छा भाभी
जी,
नमस्ते, चलता हूँ।
जी मिलते हैं।
जी।
अरे आनंद जी यहीं रहते हैं क्या?
अरे कौन दरवाजा खटखटा रहा है? आता हूँ भाई, आता हूँ। जी मैं ही हूँ आनंद, कहिए क्या काम था?
तो आप ही हैं आनंद
जी?
कल रात जो मुसाफिर आपके यहाँ ठहरे थे ना?
जी हाँ
जी, उन्होंने आपके लिए ये उपहार भेजा है।
उपहार?
यानी कि कल रात हमारे यहाँ जो ठहरे थे वो?
जी हाँ, ठीक समझा आपने, उनका नाम प्रभात सक्सेना है, वो शहर के बहुत बड़े उद्योगपति हैं।
प्रभात, यानी कि वो प्रभात सक्सेना थे?
जी।
वो शहर के बड़े उद्योगपति?
जी जी, ठीक पहचाना आपने, और उन्होंने आपके लिए कहा है कि आप दोनों मानवता के फूल हैं।
क्या सचमुच?
जी हाँ।
मानवता के फूल, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे कृष्णकांत दुबे, सलीम अहमद और मार्निक हरने। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।